सेहत की बातें डॉक्टर से बातें, क्या करें क्या ना करें, रोगों से कैसे बचें, जानने के लिए सुनते रहें अर्पण रेडियो से प्रसारित कार्यक्रम आरोग्य वाणी।
मानव सभ्यता की ज्ञात सबसे पुरानी बीमारियों में से एक बीमारी मानी जाती है वो बीमारी जिसकी चर्चा हम करेंगे आज के कार्यक्रम में। इस रोग के अभिन्न लक्षणों और इनसे जुड़ी अनिश्चितता के कारण इसका रहस्य सदा से ही बना आया है। इस रोग को वैज्ञानिक दृष्टिकोण मात्र एक शताब्दी से मिला है और इस रोग का नाम है मिर्गी अपस्मार या एपिलेप्सी, एक तंत्रिका तंत्रीय विकार यानी कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, जिसमें रोगी को मस्तिष्क में किसी गड़बड़ी के कारण बार बार दौरे पड़ने की समस्या हो जाती है। कार्यक्रम की शुरुआत में हम मिलते हैं एक ऐसे ही रोगी से।
मुझे सिम्टम्स तो कुछ समझ नहीं आते हैं, मैं आपसे बात कर रही हूँ, क्या पता मुझे यहीं बैठे बैठे फिट्स आ जाएं, आई डोंट नो, कुछ मुझे फिट्स का मैं कुछ नहीं बोल सकती। अगर आप मुझसे आके पूछते भी हैं कि तुम कैसी हो, तो मैं आपको अगर ये भी जवाब दे दूँ कि मैं अच्छी हूँ, आई एम गुड, तो हो सकता है शायद उसी टाइम बैठे बैठे मुझे फिट्स आ जाए, उसके बाद मुझे बोलना पड़े कि अब देख लो मैं कैसी हूँ क्या हूँ।
मिर्गी किसी एक बीमारी का नाम नहीं है, अनेक बीमारियों में मिर्गी जैसे दौरे आ सकते हैं।
तुमको पहली बार अटैक कब पड़ा था?
मुझे फर्स्ट टाइम अटैक पड़ा था जब मैं क्लास 4th में पढ़ती थी।
और अभी कौन सी क्लास में हो?
मैं क्लास 12th में हूँ।
जब तुमको पहली बार पड़ा था कुछ तुमको याद है उस समय का?
मुझे कुछ भी याद नहीं है, मेरे पेरेंट्स बताते हैं कि मैं सामने से कुछ शॉप से आई थी और सडनली मैं सोफे में बैठे बैठे बेहोश हो गई थी। नहीं, जब हॉस्पिटल लेके गए, MRI हुआ, सारे इतने टेस्ट हुए, तो रिपोर्ट में आया कि इसे एपिलेप्सी सीजर डिसऑर्डर कहते हैं। जिन जिन ने इसका नाम सुना उन्होंने यही कहा कि पता ही नहीं है कि क्या डिजीज है, फर्स्ट टाइम इसके बारे में सुना। डॉक्टर ने कहा था कि ये 3 ईयर्स में क्योर हो जाएगा, बट आज भी ऐसा है कि ये क्योर नहीं हुआ है।
इसका प्रभाव शरीर के किसी एक हिस्से पर भी देखने को मिल सकता है, जैसे चेहरे पर, हाथ पर या पैर पर।
फिट्स मुझे सिर्फ मेरे बॉडी से ही नहीं, कि अगर मेरे चेहरे पे फेशियल अटैक बहुत ज़्यादा आता है तो इन द सेंस ऐसा है, श्योर है कि शायद मुझे कुछ दिन में फिट्स आ जाए या उसी वक्त आ जाए फिट्स। उस टाइम का सिचुएशन ऐसा था, मुझे समझ नहीं आता था कि ये क्या हो रहा है। आज के डेट में ऐसा है कि उसके कंपैरिजन में फिट्स का टाइमिंग बहुत कम है जितने टाइमिंग में पहले आता था।
विश्व में 5 करोड़ लोग और भारत में लगभग 1 करोड़ लोग मिर्गी के रोगी हैं। विश्व की कुल जनसंख्या के 8 से 10% लोगों को अपने जीवन काल में एक बार इसका दौरा पड़ने की संभावना रहती है। 17 नवंबर को विश्व भर में विश्व मिर्गी दिवस मनाया जाता है। मिर्गी के क्या लक्षण हैं, क्या इलाज है, क्यों होता है ये सब, इन सब बातों की जानकारी देने के लिए आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं न्यूरोलॉजी में प्रशिक्षित डॉक्टर डॉक्टर रजनीश पांडे, जो मिर्गी और लकवा जैसे रोगों के रोगियों से लगातार पिछले कई सालों से रूबरू हो रहे हैं, उनकी स्थिति सुधार रहे हैं और साथ ही इन रोगों से जुड़े हुए अंधविश्वासों को दूर करके जागरूकता लाने का प्रयास भी कर रहे हैं। सबसे पहले हम इनसे ये जानते हैं ये मिर्गी या एपिलेप्सी रोग है क्या।
मिर्गी का संबंध हमारे दिमाग से चलने वाली किरणों से है, जो विद्युतीय किरणें होती हैं, जो सामान्य अवस्था में, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ या मैं अपना हाथ हिला रहा हूँ, इस समय भी हमारे दिमाग से कुछ किरणें निकलती हैं, विद्युतीय किरणें निकलती हैं, जो इन कार्यों को सुचारू ढंग से करवाती हैं। यानी कहने का मतलब ऐसे समझे कि हमारे दिमाग से ही सारी चीज़ों का कंट्रोल होता है और वो कंट्रोल इन विद्युत किरणों के माध्यम से होता है। ये विद्युत किरणें दिमाग से पैदा होती हैं और न्यूरॉन्स या एक्सॉन्स जो हम बोलते हैं हमारी भाषा में, एक कोशिकाएं होती है जिनके माध्यम से हर जगह संचारित होती है। इसी तरह से दिमाग के हर हिस्से से, हर विशिष्ट हिस्से के लिए संरचनाएं होती हैं जहां से ये किरणें निकलती हैं। पर्टिकुलर मिर्गी, जो मिर्गी का आना होता है, वो उस समय, उस थोड़े समय के लिए ये जो विद्युत के संचार की नॉर्मल प्रणाली जो है, सामान्य जो प्रक्रिया है, ये बाधित हो जाती है। इस सामान्य प्रक्रिया के बाधित होने के पीछे के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इसकी जो हमारी डेफिनेशन है, इसमें हम ये बोलते हैं कि ये अचानक थोड़े समय के लिए दिमाग के किसी एक हिस्से या पूरे के पूरे दिमाग से बिजली के करंट का या विद्युतीय प्रवाह का असाधारण रूप से, असामान्य रूप से निकलना है। अब जब ये असाधारण ढंग से निकलेगा तो हमारे शरीर के हर हिस्से असाधारण ढंग से उसको रिस्पॉन्स करेंगे। जो हिस्से को हाथ को हम सामान्य ढंग से उठाते हैं वो हाथ कभी कड़ा होगा, अकड़ेगा और कभी फैलेगा, क्योंकि दिमाग से ही उसका कंट्रोल होता है। तो वास्तविकता ये है कि जो मिर्गी आई वो दिमाग में विद्युत के प्रवाह के असामान्य तरीके से होने की वजह से, उसका और कोई कारण नहीं।
मानव मस्तिष्क कई खरब तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इन कोशिकाओं की क्रियाशीलता कार्यकलापों को नियंत्रित करती है। मस्तिष्क के समस्त कोशों में एक विद्युतीय प्रवाह होता है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, जो नाड़ियों द्वारा प्रवाहित होता है, और ये सारे कोश विद्युतीय नाड़ियों के माध्यम से आपस में संपर्क बनाए रखते हैं।
ये समझना चाहिए कि जैसे बिजली का करंट हमारे घरों में फैलता है तो बल्ब जलता है, पंखा चलता है, टीवी चलती है, अगर अचानक से शॉर्ट सर्किट होती है, विद्युत का प्रवाह वहाँ भी हो रहा है लेकिन वो असामान्य हो रहा है, तो जो विद्युत का प्रवाह वहाँ हो रहा है वो किसी काम का नहीं है और उसके चलते चीजें खराब होती हैं। उसी प्रक्रिया के तहत हमारे दिमाग में विद्युत का प्रवाह असामान्य ढंग से हुआ तो जो शॉर्ट सर्किट हुआ उसका रिजल्ट मिर्गी है।
मिर्गी किसी को भी हो सकती है, बालक, वयस्क, वृद्ध, पुरुष, स्त्री, सबको। दिमाग पर जोर पड़ने से मिर्गी नहीं होती। कई लोग खूब दिमाग का काम करते हैं लेकिन स्वस्थ रहते हैं। मानसिक तनाव या अवसाद से मिर्गी नहीं होती। अच्छे भले हंसते गाते इंसान को भी मिर्गी हो सकती है। मेहनत करने और थकान से भी मिर्गी नहीं होती। ये आराम करने वालों को भी हो सकती है। कमजोरी या दुबलेपन से मिर्गी नहीं होती, बल्कि खाते पीते पहलवान को भी हो सकती है। न ही मांसाहार करने से मिर्गी होती है, शाकाहारी लोगों को भी उतनी ही संभावना से मिर्गी हो सकती है। लेकिन मिर्गी का एक कारण सिर पर चोट लगना हो सकता है।
जब मैं क्लास 3 में पढ़ती थी, हम लोग खेल रहे थे और खेलते खेलते ऐसा हुआ था कि मैं झुकी हुई थी नीचे लॉन्ड्री की शॉप से, तो जस्ट फॉर अ सेकेंड उसी पीरियड के लिए वो लाइट गोल हुआ था। शॉप वाला इधर देख के शटर डाउन कर रहा था, उसने देखा नहीं, उसने बढ़िया कितने जोर से शटर नीचे किया, धम से मेरे यहाँ पे आके शटर पूरा गिरा। एंड जस्ट फॉर सेकेंड उतने ही पीरियड के लिए मुझे ऐसा लगता है लाइट गोल हुआ था। और जैसे ही ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ, छोटी सी थी, एक अंकल घर में लाए गोदी से करके, घर वाले देख के चौंक गए, मीन्स मेरा मुंह ही नहीं दिख रहा था, पूरा खून ब्लीडिंग को पूरे चेहरे में, इसलिए लग रहा था कि बाल्टी से कोई मेरे सिर में ब्लड को डाल रहा है और मेरे चेहरे से पूरा उतर रहा है वो। कुछ स्टिचेस आने से, कुछ नस में कुछ स्टिचेस आए होंगे बस उसी के कारण। एंड उसके बाद से ऐसा स्टार्ट हुआ कि ऑटोमेटिकली मेरा मुंह टेढ़ा हो जाता था, उसे कहते हैं फेशियल अटैक। क्लास में फ्रेंड्स लोग बोलते थे, ये तो कैसे कैसे मुंह बना रही है, ये तुझे क्या हो रहा है, ये क्या है, अरे। और ऐसा होने के बाद मुझे कुछ याद ही नहीं रहता था। एंड सिंस क्लास 3 टू क्लास 12 मुझे आज की डेट में इतना कॉम्प्लेक्स है इस चीज़ का कि मैं कभी किसी के सामने कंटिन्यूसली बहुत देर बात भी नहीं कर पाती हूँ, बहुत देर बैठ भी नहीं पाती हूँ। मुझे लगता है 2 मिनट बात करूँ वहाँ से चले जाऊँ, ताकि मेरा चेहरे में जब ऐसे मुझे फेशियल अटैक आए तो मुझे ऐसे कोई देखे मत।
मिर्गी कभी भी किसी को भी तो आ सकती है, लेकिन उसके कुछ खास कारण होते तो होंगे। क्या शरीर में किसी पौष्टिक तत्व के या किसी विटामिन की कमी के कारण ऐसा हो सकता है?
जैसे अगर आप जो बोल रही हैं कि विशिष्ट अवयवों की कमी से या विशिष्ट पौष्टिक पदार्थों की कमी से, तो उन विशिष्ट पौष्टिक पदार्थों की कमी में सिर्फ एक चीज़ सबसे महत्वपूर्ण होती है, नमक। शरीर में नमक की अचानक कमी होने की वजह से किसी को भी मिर्गी आ सकती है। दूसरा, शुगर के मरीजों में शुगर के अचानक कम होने की वजह से मिर्गी आ सकती है। तो 2 ऐसी चीज़ें हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है, एक सोडियम, नमक, नमक का एक तत्व है वो, और दूसरा शुगर। लेकिन अगर ये कमी एक थ्रेशोल्ड लेवल, एक मानक पैमाने के नीचे नहीं जाती है तो मिर्गी नहीं।
दौरे के समय व्यक्ति का दिमागी संतुलन पूरी तरह से गड़बड़ा जाता है और उसका शरीर लड़खड़ाने लगता है। तरह तरह के लक्षण भी होते हैं, जैसे बेहोशी आना, गिर जाना, हाथ पांव में झटके आना। लेकिन अलग अलग उम्र में उन दौरों के पड़ने के कारण भी अलग अलग हो सकते हैं, बता रहे हैं डॉक्टर रजनीश पांडे।
मिर्गी के कारणों को अगर हम देखें तो हर उम्र की कुछ विशेष कारण है, उसके अलावा कुछ सामान्य कारण है जो सभी के लिए बराबर है, चाहे वो वृद्ध हो या बच्चा हो। जो हम लोग इसकी कैटेगराइजेशन करते हैं, कारण की बात करते हैं, तो कैटेगराइजेशन में हम लोग 2 कैटेगरी बनाते हैं इसकी। एक, जो मिर्गी किसी एक हिस्से से संबंधित हो, जिसको हमारी भाषा में फोकल या पार्शियल सीजर बोलते हैं। दूसरा, मिर्गी जो शरीर के हर हिस्से को इन्वॉल्व करती है, उसको हम लोग जनरलाइज सीजर बोलते हैं। इसके अलावा भी कुछ कैटेगरीज होती हैं। जो फोकल सीजर है, शरीर के किसी एक हिस्से से संबंधित मिर्गी है, वो मिर्गी सामान्य तौर पर पकड़ में नहीं आती है। बच्चा कभी बोलेगा कि मेरा हाथ झुनझुनी कर रहा है, या आपको भी, मुझे भी हो सकता है, अचानक हाथ में थोड़ी झुनझुनी होगी या अजीब सा कुछ लगेगा, जैसे चींटी चली है कुछ हुआ। उसको हम लोग फोकल में, मतलब एक हिस्से का सेंसरी, कुछ वहाँ से संदेश लाने वाली मिर्गी हुई, वो एक हो सकती है। इसके अलावा और ऑटोनॉमिक कई सारी इसमें चीज़ें होती हैं। दूसरा मोटर हो सकती है। मोटर में क्या होता है, हमारे एक हाथ में या उंगलियों में अचानक वो भीचेंगी, वो अचानक कड़ी होंगी, अचानक खुल जाएंगी, अचानक कड़ी होंगी, अचानक खुल जाएंगी। लेकिन समझने की बात यह है कि एक सिर्फ हाथ में, एक हाथ में होगा ये, न कि दोनों हाथ में या दोनों पैरों में। पर सामान्य तौर पर ये मिर्गियाँ अननोटिस चली जाती है, ये पता नहीं चलती है, क्योंकि इनसे कुछ विशेष नुकसान नहीं होता। अपने बढ़ोतरी के समय जब ये बढ़ती हैं तो ये जनरलाइज सीजर की तरफ चली जाती है, बेहोशी ला सकती है।
मिर्गी के सभी मरीज एक जैसे भी नहीं होते, किसी की बीमारी मध्यम होती है, किसी की तेज। लेकिन ये एक आम बीमारी है जो लगभग 100 लोगों में से एक को हो सकती है। लेकिन अगर किसी को दौरे या फिट्स पड़ रहे हैं तो वो मिर्गी के ही हो, क्या ये जरूरी है, ये कैसे जाना जा सकता है?
अभी आज की तारीख में हम लोगों ने दो कैटेगरी बनाई हुई है, एक वास्तविक मिर्गी है और उसके अलावा कुछ और चीजें जो मिर्गी नहीं है, उनको सामान्य तौर पे हम लोग स्यूडो सीजर बोलते हैं। मतलब जिसको बस मिर्गी जैसा लग रहा है पर वो मिर्गी नहीं है। जो चीजें मिर्गी जैसी लगती हैं पर मिर्गी नहीं होती, उसमें बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि दिल की धड़कनों का अनियमित होने से व्यक्ति अचानक गिर जाता है। जब व्यक्ति अचानक गिर जाता है तो उसको ऐसा समझा जाता है कि उसको मिर्गी है, लेकिन उसको हम लोग सिनकपी बोलते हैं, तो ये एक अलग प्रकार हो गया। ऐसे ही कोई व्यक्ति यदि जानबूझ के गिर जाए, ऐसा जिसको आप लोगों सामान्य भाषा में लोग हिस्टीरिया भी बोलते हैं, पर आजकल उस वर्ड को हटा दिया गया है, उसकी जगह हम लोग कन्वर्जन डिसऑर्डर वर्ड यूज करते हैं। मतलब वो जानबूझ के किया गया चीज़ है, इसमें पकड़ पाना सामान्य व्यक्ति के लिए थोड़ा कठिन काम होता है। जानबूझ के करना मतलब ऐसा समझे कि मुझे मिर्गी नहीं आ रही है, मैं होशो हवास में हूँ, पर अपने किसी इष्ट के चलते, अपने किसी कारण की वजह से जो आप नहीं जानती हैं, मैं अगर कहूँ कि मेरे हाथ में दर्द हो रहा है या मेरा हाथ अचानक अकड़ रहा है और फैल रहा है, तो इस तरह की मिर्गी को या इस तरह की चीज़ को कन्वर्जन डिसऑर्डर की श्रेणी में रखें।
कन्वर्जन डिसऑर्डर, हिस्टीरिया, ये शब्द भी बहुत सुने हुए से तो लगते हैं, लेकिन मिर्गी और हिस्टीरिया को एक ही समझा जाता है। डॉक्टर साहब से हम ये जानते हैं कि ये दोनों दौरे पड़ने की बीमारियां क्या एक ही हैं?
नहीं मैडम, ये दोनों बिल्कुल ही अलग चीजें हैं। हिस्टीरिया पूरी तरह से मिर्गी से एकदम अलग है, और हिस्टीरिया एक मनोरोग जैसी चीज है, मिर्गी एक स्नायुओं का, हमारे दिमाग की बीमारी है। दोनों पूरी तरह से अलग चीजें हैं।
मिर्गी के रोग से ग्रस्त होने पर व्यक्ति के शरीर में झटके आना, शरीर का अकड़ जाना, आंखें ऊपर की ओर उलट जाना, अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं रहना शामिल होता है।
आपकी बेटी को इतने समय से मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, इस दौरान आप लोगों को क्या क्या परेशानियां आती हैं, क्या क्या चीजें देखनी पड़ती हैं?
काफी कुछ उसकी चीजों पे ध्यान देना पड़ता है, उसको अकेले नहीं छोड़ना कहीं भी, और किसी चीज से उसे चोट ना पहुंचे, और इस एज में आके उसको संभालना उठाना, तो ये सब चीज़ें काफ़ी मुश्किल रहती हैं। इनको अकेले फेस करना बहुत मुश्किल है, उसको अकेले नहीं हम छोड़ सकते हैं, क्योंकि कभी भी कहीं गिर जाए या कुछ भी हो जाए तो उसके लिए नुकसानदायक है वो चीज़। जब फर्स्ट टाइम उसको दौरा आया उस समय हमें तो पता भी नहीं था कि क्या चीज़ है, नॉर्मल थी बच्ची हमारी, अचानक बाहर से आई है घूम के, बोली बहुत घबराहट हो रही है, अच्छी नहीं लग रही है तबीयत, सोफे में बैठ गई और अचानक उसको वॉमिटिंग हुई, उल्टी हुई है, उल्टी होते साथ उसको जब सीधा किया तो पूरे हाथ पाँव टेढ़े हो गए, मुंह टेढ़ा हो गया, और उसके बाद आंखें पलट गई और बहुत विभत्स चेहरा हो गया उसका, और उसके बाद उसको झटके आने चालू हो गए।
ये दौरे कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनट तक हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद शरीर की हालत ऐसी हो जाती है कि जैसे उसमें कुछ ताकत ही ना बची हो।
30 seconds, 1 minute, 2 minutes ऐसे। और ऐसा भी हुआ है इन कुछ सालों में कि मुझे एक दिन में 6 times, 8 times भी फिट्स आए हैं।
उनको कहीं पे भी जाने आने में सब में बहुत प्रॉब्लम होती होगी।
डेफिनेटली मुझे कहीं जाने का मन भी रहता है तो भी मेरे पेरेंट्स मुझे अकेले कहीं जाने नहीं देते हैं। मुझे बहुत दुख होता है कि मेरे फ्रेंड्स इतने खुले हो के इतने अच्छे से घूमते हैं और मैं नहीं घूम पाती हूँ। मुझे इस चीज़ का बहुत दुख है कि मैं आज के डेट में मेरे बैच के फ्रेंड्स इतना इंजॉय करते हैं, मैं उनके कंपेरिजन में जीरो कुछ इंजॉय नहीं कर पाती हूँ। जो भी मुझे इंजॉयमेंट रहता है घर पर होता है, घर पर क्या इंजॉयमेंट होगा, बस ऐसे कोई फ्रेंड्स भी नहीं है, स्कूल के सारे फ्रेंड्स छूट गए, और इस डिज़ीज़ के कारण मेरे लाइफ से काफ़ी कुछ चीज़ें लॉस हुई हैं, और काफ़ी कुछ चीज़ों का डिज़ीज़ से रिलेटेड काफ़ी कुछ चीज़ों का मुझे कॉम्प्लेक्स भी है।
सिर पर चोट लगना और मस्तिष्क की कोशिकाओं में कुछ डिफेक्ट आ जाना जिससे कि विद्युत तरंगें सही तरीके से प्रवाहित ना हो, ये तो कारण हो गए।
लेकिन इसके अलावा क्या और कुछ भी कारण होते हैं मिर्गी के दौरों के आने के, और क्या अलग अलग उम्र में अलग अलग कारण होते हैं?
इसके बहुत सारे कारण हैं, जिसमें एक कारण जो आपने खुद अभी कहा कि कुछ स्नायुओं के खराब होने की वजह से भी होता है। उम्र की वजह से कारणों को हमने बांटा है, जैसे बच्चों के लिए हमने खासतौर से नवजात शिशुओं में, नवजात शिशुओं में शरीर में ऑक्सीजन के प्रवाह की कमी की वजह से, खासतौर से जब माता के गर्भ से बच्चा आता है उस समय दिमाग में भी ऑक्सीजन की कमी होती है, तो इस तरह की मिर्गी शुरुआत होती है जिसको हाइपोक्सिक परेशानी बोलते हैं, ऑक्सीजन की कमी का होना बोलते हैं। इसके अलावा थोड़े उससे बड़े बच्चों में शरीर के तापमान का अचानक बढ़ना, उसके चलते मिर्गी आती है, जिसको फिब्राइल सीजन बोलते हैं। ये दोनों कैटेगरी खासतौर से छोटे बच्चों में ही देखी जाती है। बड़े लोगों में जिसमें चोट की वजह से सर में कभी चोट लगी, जिस तरह हमारे शरीर के किसी हिस्से में चोट लगने से वहाँ पर कुछ निशान पड़ जाते हैं, इसी तरह दिमाग में जब चोट लगती है तो कुछ हिस्सों में निशान पड़ जाते हैं, उस निशान से बिजली का विद्युतीय जो घटना है वो अचानक से खराब तरह की होती है और मिर्गी आती है। इसके अलावा जो लोग निरंतर रोज शराब पीते हैं, तो शराब की मात्रा ज़्यादा बढ़ने से या शराब जब वो छोड़ते हैं अचानक, जैसे कोई व्यक्ति रोज शराब पी रहा है और वो दो दिन के लिए शराब छोड़े, तो उसे मिर्गी आने का डर रहता है। इस तरह की चीज़ें और कुछ नशों में भी होती है।
कुछ विशेषज्ञों के अनुसार सुअर के आंतों में मिलने वाले फीता कृमि यानी टेप वर्म के संक्रमण से भी मिर्गी की संभावना रहती है। इस कृमि के सिस्ट यदि किसी प्रकार मस्तिष्क में पहुंच जाएं, तो उसके क्रियाकलापों को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे मिर्गी की आशंका बढ़ जाती है।
एक और चीज है जो सभी उम्र में हो सकती है, दिमाग में कीटाणुओं के संक्रमण की वजह से मिर्गी की। दिमाग में कीटाणुओं का संक्रमण बहुत महत्वपूर्ण है और ये सबसे कॉमन प्रकार आज की तारीख में है, खासतौर से वो लोग जिन्हें वायरल इनकेफेलाइटिस की बीमारी होती है, वायरसों के संक्रमण के चलते जो बीमारी होती है, इसमें मिर्गी का होना बहुत सामान्य है। और मैं जनता को, मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहता हूँ कि जो दिमाग में बुखार की मिर्गी है, चाहे वो टीबी की वजह से हो, चाहे वो वायरस की वजह से हो या बैक्टीरिया की वजह से हो, वो पूरी तरह से ठीक होने वाली मिर्गी है, क्योंकि इसमें कारण स्पेसिफिक है। जब उस कारण का निदान हो जाएगा तो मिर्गी आने की गुंजाइश न के बराबर रहती है, वो व्यक्ति एकदम सामान्य हो जाता है।
मिर्गी का एक प्रकार और है, अदृश्य मिर्गी। क्या है ये, आइए समझे।
मिर्गी जो जनरलाइज सीजर बोलते हैं, जो सब पूरे शरीर में फैलने वाली मिर्गी है, उसमें एक मिर्गी को हम लोग बोलते हैं अदृश्य मिर्गी, एब्सेंस सीजर। एब्सेंस सीजर या अदृश्य मिर्गी में आपको ये पता नहीं चलेगा कि मरीज को मिर्गी आ रही है। सामान्य तौर पर कम उम्र के बच्चे, जो स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं, उसमें ये चीज़ ज़्यादा पाई जाती है। स्कूल से अक्सर जो है अभिभावक आके बोलते हैं या शिकायत करते हैं कि बच्चा स्कूल पर ध्यान नहीं देता पढ़ाई में। सामान्य शिकायत ये रहती है कि बच्चा ब्लैक बोर्ड की तरफ लगातार देखता रहता है, उसे आवाज़ देने पर भी सुनता नहीं है, पलकों को अजीब ढंग से बार बार झुकाता और उठाता है। दरअसल ये एक मिर्गी का प्रकार है, जनरलाइज मिर्गी का प्रकार है, शरीर के हर हिस्से में फैलने वाली मिर्गी है, जिसे हम एब्सेंस सीजर बोलते हैं। इस मिर्गी में व्यक्ति को होश नहीं रहता, हालांकि उसे झटके नहीं आते, पर उसका दिमाग थोड़े समय के लिए शून्य हो जाता है, चेतना विहीन हो जाता है। यही कारण होता है कि ये बच्चे स्कूल की परफॉर्मेंस इनकी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि उन्हें एक बीमारी है, एक परेशानी चल रही है, और उस बात को ये सोचा जाता है कि बच्चा पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा है और उसे पीटा जाता है, परेशान किया जाता है और पनिशमेंट दी जाती है। इस उम्र के बच्चों को यदि इस तरह की पढ़ाई में कोई कमजोरी हो तो डॉक्टर से मिलना चाहिए और सही सलाह लेनी चाहिए। इस तरह की मिर्गी का जो कैलकुलेशन होता है, जो जाँच होती है, प्रणाली होती है, उसके लिए ईईजी एक बहुत अच्छी जांच होती है, जिसमें चीज़ें सामने आ पाती
है। क्या पता चल जाता है?
इस जांच से जो दिमाग की करंट निकलती है, जो विद्युत प्रवाह होता है, उसको हम लोग नापते हैं, और इन बच्चों में ये जांच के प्रवाह की दर जो होती है वो अचानक अचानक बढ़ी या घटी रहती है, जो असामान्य होती
है। इतना जरूर बोलूंगी, फ्रॉम क्लास 3rd to class 12th अभी तक मुझे इस चीज़ का कॉम्प्लेक्स बहुत है, जो मेरे फेस में फेशियल अटैक आता है। और सेकंड चीज़ ये, इस डिज़ीज़ से मुझे इम्प्रूवमेंट मिली है, बट ऐसा है कि मुझे आज के डेट में एक चीज़ का दुख है कि मैं अपने स्कूल लाइफ को कम्प्लीटली पूरा नहीं कर पाई और आज मैं ओपन स्कूल से पेपर दे रही हूँ। मुझे इस डिज़ीज़ को लेके कभी कभार बहुत दुख होता है कि मैं एक्चुअल जो स्कूलिंग लाइफ होती है उसको मैं इंजॉय नहीं कर पाई।
मिर्गी के बारे में सुनकर बहुत सारी भ्रांतियाँ दिमाग में आती हैं। गांव में कभी किसी को जूता सुंघाया जाता है, कोई डोना टोटका करवाता है, कोई मानता है कि अगर किसी के माँ बाप को मिर्गी आती है तो उसके बच्चे को 100% मिर्गी का रोग होगा। ये सब भ्रांतियाँ इतनी सही हैं कितनी गलत जानते हैं।
पहली भ्रांति ये है कि मिर्गी जो होती है वो वंशानुगत होती है, ये और किसी को नहीं हो सकती। पर इस बात को आप समझ लें कि हर उस व्यक्ति को मिर्गी आएगी जिसके माता पिता को मिर्गी आती हो, उसके बच्चों को मिर्गी आएगी, इस बात को हमें इग्नोर करना चाहिए, ये बात सही नहीं है। इस बात की गुंजाइश बिल्कुल रहती है कि जिसको जिसके परिवार में किसी को मिर्गी आ रही है उसमें वंशानुगत होने की गुंजाइश रहती है, परंतु ये मात्रा बहुत कम है। इसके अलावा हमारे गांवों में लोग सोचते हैं कि ये भूत प्रेत का साया है। जो लोग समझते हैं उन्हें मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने परिवार के लोगों को बेवजह परेशान कर रहे हैं। ये जो मैंने सुना है कि गाँव में मारते पीटते थे भूत आया उसे भगाने के लिए, इन चीज़ों से बचें। पहले आप डॉक्टर से सलाह लें, सारी चीज़ें करें, उसके बाद ही कोई भी निष्कर्ष पर पहुंचे। और ये स्पष्टता है कि मिर्गी एक बीमारी है, न कि किसी भूत प्रेत का आना है। तीसरी चीज़, लोगों के दिमाग में ये बात रहती है कि ये कभी ठीक नहीं होती, मिर्गी कभी ठीक नहीं होती। इसमें मैंने अभी मैडम शुरू में ही आपको बोला कि जो मिर्गी बैक्टीरिया वायरस के चलते हमारे दिमाग में होती है, टीबी के चलते जो हमारे दिमाग में होती है, वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है, दोबारा नहीं होती है। दूसरा, अगर दवाइयाँ चलती रहें तो मिर्गी पूरी तरह से कंट्रोल में रहती है, वो पूरी तरह से सामान्य जीवन जी सकता है। इस बात को हमें समझना चाहिए, और ये वैज्ञानिक सच है, ये हमारी मेडिकल साइंस में सच है कि मिर्गी के रोगी को अगर सही मात्रा में सही दवाई दी जाए तो 100 में शायद किसी एक व्यक्ति को मिर्गी आ सकती है, नहीं तो 99 लोगों की मिर्गी ठीक हो जाती है।
किसी भी परिवार में किसी भी रोग के साथ जब परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है तो लोग हर व्यक्ति की सलाह मानने लगते हैं, अंधविश्वास को भी विश्वास में लेकर चलने लगते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि ऐसी चीजों से नुकसान भी हो सकता है।
मेडिकल साइंस की तरफ तो हम लोग जा रहे थे, इसके अलावा हमारी दूसरी तरफ भी ध्यान गया, क्योंकि ना हम कई लोगों ने बोला कि इसको झड़ाओ फुकाओ कहीं दिखाओ इसको, वो भी हमने प्रयास किए। यही चल रहा है कि जो जैसा बोलता है, मेडिकल साइंस की तरफ भी जा रहे क्योंकि इसकी मेडिसिन भी चल रही है, एलोपैथिक भी चल रही है, होम्योपैथिक भी चल रही है, जो जिसने जैसा बोला सारे हम कर रहे हैं। जैसे कई लोग टोटके करके करते हैं, वो आयुर्वेदिक में कुछ ट्रीटमेंट होते हैं, बाहर ले जाओ गांव ले जाओ, सब जगह करके देख लिया। अब दवाइयों से काफी कंट्रोल है उसका, काफी चीजें जो बहुत बिगड़ चुकी थी वो चीजें लाइन पे आई हैं, जो उसको भूख नहीं लगती थी, भूख मर गई थी उसकी, इतनी हाई डोज मेडिसिन चल रही थी, वो सारी चीजें अभी काफी कंट्रोल हो गई हैं। उसकी दौरों की जो फ्रिक्वेंसी थी वो काफी कम हो गई है, अभी पहले से इम्प्रूवमेंट तो है, लेकिन एक जो परमानेंट एक जो होना चाहिए इलाज वो नहीं हो पा रहा है उसके लिए। तो उसकी वजह से हम लोग कहीं ना जा पा रहे, ना बच्चे को अकेले छोड़ सकते हैं, वो एक नॉर्मल लाइफ अभी जैसा उसको होना चाहिए वैसी नहीं हो पा रही है उसकी।
3000 mg की मेडिसिन मैं क्लास 4 से खाते आ रही थी, वो मेडिसिन इतना मुझे नुकसान कर रही थी अंदर से, कि एक एज के पहले बॉडी का ज़्यादा ग्रोथ हो जाना, ऑटोमेटिकली बाल झड़ने लगना। एंड मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि अभी मैं मेडिसिन खाई हूँ, हाफ एन आवर बाद मुझे आंखों से दिखना बंद हो चला था। एंड ये एपिलेप्सी पेशेंट्स के साथ होता है कि उनको आईज में प्रॉब्लम आता ही है। मुझे ऐसे वॉल को पकड़ के, फ्रिज को पकड़ के, हाथ को पकड़ के मुझे वॉशरूम जाना पड़ता था, मुझे कहीं आना जाना पड़ता था मेडिसिन खाने के बाद। मैं सोचती थी ऐसा क्यों हो रहा है, नींद आ रहा है कि क्या हो रहा है, तो मैं गुलाब जल अपने आँखों में पट्टी बांध के कि अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा, बट नहीं, वो बाद में मालूम चला वो मेडिसिन के कारण ही है। बट आज के डेट में ऐसा नहीं है क्योंकि वो मेडिसिन बंद हो चुकी है।
बच्चे के ऊपर ये लगता है ऐसे तो नॉर्मल दिखती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो डिप्रेशन में तो है, क्योंकि वो खुद जब अकेले में बैठती है तो जो बातें वो करती है कि मुझे लोग छोड़ते नहीं हो अकेले, तो हम लोग तो उसकी सेफ्टी के लिए उसको छोड़ते नहीं है, कि हमें डर लगता है कि 2-3 बार ऐसा हो गया कि बाहर भी उसको आ चुका है, फिर नेचर भी है उसका सोचने वाला, क्योंकि ऐसा पेशेंट काफी डेलिकेट हो जाता है। तो भी एक नॉर्मल बच्चे की तरह आना जाना, एक 18 साल की बच्ची है उसको, आज की डेट में आजकल बच्चे कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन वो अपने सीमित दायरे में ही है, ज्यादा बाहर कहीं निकल नहीं पा रही, कुछ नहीं कर पा रही है।
जिन बच्चों को लगातार दवाइयाँ खाने के बाद भी फ्रिक्वेंसी कम हो जा रही है लेकिन मिर्गी का लंबे समय तक चल रहा है, तो ऐसे बच्चों को कॉन्फिडेंस की कमी है, उनको बाहर निकलने से रोकना, उनको कैसी सावधानियाँ और कितना प्रतिबंधित करना पड़ेगा?
कुछ बच्चों में ये चीज़ सच्चाई है कि हमारी दवाइयों के बावजूद मिर्गी आती है, उसके कारण कई सारे होते हैं। कारण, मुख्य कारण ये रहता है कि वो उन दवाइयों के लिए रेजिस्टेंस डेवलप हो सकता है या उनके शरीर में उन दवाइयों की मात्रा कम हो सकती है। इसके लिए मेरी सलाह ये है कि आप दवाइयों को लगातार करें और अपने डॉक्टर से लगातार मिलते रहें, परंतु जो एक मानसिक अवसाद आता है उसको भी आप डॉक्टर से शेयर करें, उस हिसाब से वो कुछ मानसिक अवसाद के लिए भी दवाई उसमें जोड़ेंगे। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि जिस व्यक्ति को लगातार झटके आ रहे हैं दवाई खाने के बाद भी, वो निश्चित रूप से थोड़े मानसिक अवसाद में जा सकता है, पर उसके लिए भी इलाज संभव है, तो उसके लिए वो इलाज लेना चाहिए।
अगर किसी व्यक्ति को आपके सामने मिर्गी का दौरा पड़ जाए तो आपको क्या करना चाहिए?
अगर मिर्गी आए तो आप ये सावधानी रखें कि आसपास में कोई भी कड़ी चीज या नुकीली चीज न हो, उसे तुरंत हटाएं और जो भी व्यक्ति को मिर्गी आ रही है उसे करवट में करें। करवट करने से फायदा ये होता है कि अगर मुंह में कोई चीज है या लार या थूक जो है वो फेफड़े में नहीं जाती, कई बार इसी कारण से मरीजों की मौत होती है। हमारे यहाँ सामान्य हर गांव में ये चीज चलती है, मैंने देखा है कि लोग जूता सुंघाते हैं या कुछ और इस तरह की चीजें सुंघाने पहुंच जाते हैं या मुंह में पानी डालने लगते हैं या और कोई पदार्थ डालने लगते हैं। बिल्कुल भी ये चीज एडवाइजेबल नहीं है। आप जब मिर्गी आ रही हो उस समय और जब व्यक्ति बेहोश की स्थिति में रहता है, करीबन कई बार व्यक्ति 3-4 घंटे तक बेहोश रहता है, उस अवस्था में मरीज को बिल्कुल भी कुछ भी मुंह से नहीं देना है जब तक वो खुद से मांगे ना होश में ना आ जाए।
जिन परिवारों के सदस्यों को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं उस परिवार के लोगों को क्या सावधानियां रखनी चाहिए? डॉक्टर साहब का उन लोगों के लिए एक संदेश।
पहली गुजारिश है उन लोगों से जिन्हें मिर्गी आती है और उनके परिवार के सदस्यों से कि मिर्गी की जो भी दवाई आपके डॉक्टर ने लिखी है आप उस दवाई को अपने मन से कभी बंद न करें। उस दवाई को लगातार खाएं जब तक डॉक्टर ने कहा है। यदि आपको कुछ उस दवाई का साइड इफेक्ट लग रहा है, कुछ आपको तकलीफ लग रही है, तो आप अपने डॉक्टर से जाके मिलें, अपने से दवाई कभी बंद न करें। हमारी प्रणाली में हम लोग मिर्गी की जो दवाइयाँ चलाते हैं वो करीबन 3 साल तक चलाते हैं। जब लगातार किसी व्यक्ति को मिर्गी नहीं आती दवाई खाते के समय, तो उन दवाइयों को धीरे धीरे कम किया जाता है और फिर बंद किया जाता है, कि एक साथ अचानक बंद नहीं किया जाता। लेकिन सामान्य तौर पे जो हमारे मरीज पहुँचते हैं अस्पताल में दोबारा मिर्गी लेके, वो बोलेंगे कि शादी में गए थे तो दवाई खाना भूल गए। और जैसे वो दवाई खाना भूलते हैं, क्योंकि दवाई की मात्रा जैसे ही शरीर में कम होती है तो फिर मिर्गी आने की संभावना को बढ़ा देती है। दूसरी चीज, जब भी किसी व्यक्ति को मिर्गी आती है तो उसे समझा जाता है कि असामान्य है, परिवार के सदस्य भी उन्हें सामान्य समझें। कुछ यहाँ पे समझदारी की चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें जिनसे हमें बचना है वो ये हैं, आग, पानी और अधिक ऊंचाई, इन चीज़ों से हमें अपने बच्चों को, अपने परिवार के सदस्यों को बचा के रखना है जिन्हें मिर्गी आती है। कुछ मरीज की इस दौरान मौत हो जाती है, जो अचानक पानी में तालाब में कूदते हैं उस समय मिर्गी आ सकती है और उस समय पानी में उनकी मौत हो सकती है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि इन बच्चों की पढ़ाई न रोकें, इन्हें पढ़ाई पर जाने दें, आप बस दवाइयाँ सही समय पर दें और उनके टीचर्स को, इनके कलीग्स को ये बता के रखें कि इन्हें मिर्गी आती है और मिर्गी आए तो ये सावधानी बरतनी है।
इतनी देर में आप लोग ये तो समझ ही चुके हैं कि मिर्गी का दौरा पड़ने पर लोग सुध-बुध खो देते हैं, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका इलाज संभव है। ये दैवीय प्रकोप या जादू टोने से जुड़ी समस्या बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इसका संबंध दिमाग से है। इन बातों का ध्यान रखें और आपके सामने, आपके परिचितों में या आपके परिवार में अगर कोई ऐसा रोगी है तो दौरे पड़ने की बात को छिपाएं दबाएं नहीं, बल्कि जाएं जल्द से जल्द डॉक्टर के पास। और बस आज के इस कार्यक्रम से अब हमको इजाजत दीजिए। हमारे साथ डॉक्टर रजनीश पांडे ने जो जानकारियां उपलब्ध कराई उसके लिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और अब दीजिए आपकी अपनी संज्ञा को इजाजत। नमस्कार।
आप सुन रहे हैं रेडियो अर्पण।